والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين وشفيع المذنبين والمخاطب بطه وياسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين أجل اللهم له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى الأبد أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم الاثر اسلامک سوسائٹی آف وکٹوریا میلبرن کے 1442 ہجرہ کے اس پہلے عشرے کی آج 3 محرم کی مجلس ہے اور جیسا کہ میں مسلسل اپنے سبجیکٹ کو بیان کر رہا ہوں کہ غدیری اسلام اور حسینی اور یزیدی اسلام غدیری اسلام وہ ہے جس کے لیے 18 ذلحج کو غدیر خم میں اعلان ہوا کہ الیوم اکملت لکم دینکم کہ غدیری اسلام کی پہلی خاصیت یہ ہے کہ یہ مکمل ہے اتممت علیکم اور دوسری خاصیت یہ ہے کہ اس میں ساری نعمت کا اتمام کیا گیا ہے یعنی علی کی ولایت اور تیسری خاصیت یہ ہے کہ ورضیت لکم الاسلام دینا تو پس اب یہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین قرار پا رہا ہے یہ غدیری اسلام اور وہ یزیدی اسلام ہے یہ جسے حسین جیسا محافظ اسلام الوداع کہنے کو تیار ہے مقتل کی روایتوں کو سند میں اس طرح سے نہیں چیک کیا جاتا ہے جس طرح سے عقیدے کی روایتیں چیک ہوتی ہیں اور جس طرح سے واجبات و حرام کی شریعت کی روایتیں تو مقاتل میں یہ جملہ آقا حسین کا ہے اس سے پہلے کہ میں غدیری اسلام کے حوالے سے کل رات کی جو مجلس تھی وہاں سے بات کو آگے بڑھاؤں ذرا سا بے ترتیبی میں ایک چھوٹا سا پہلو بیان کر دوں اگرچہ یہ شروع والا پہلو آگے چل کر پوری ایک تقریر بنے گا لیکن آج چونکہ اس کے حوالے سے ایک اعلان کرنا وہ غدیری اسلام کے حوالے سے ہر آدمی یہ بات تو جانتا ہے کہ مولا متقیان شہر کوفہ کو اپنا کیپیٹل بنا چکے آدھی رات کا وقت ہے اپنے گھر میں تشریف فرما بیت المال کے اکاؤنٹس کو چیک کر رہے کہ اتنے میں کوئی وزیٹر آتا مولا سے بات کرنا چاہتا مولا پہلا سوال یہ کرتے ہیں کہ تو اپنا پرسنل معاملہ لے کے آیا یا اس کا تعلق تمام مسلمانوں کے معاملات سے ہے کہا مولا یہ میرا پرسنل میٹر مولا نے فوراً چراغ کو گل کر دیا کہا بتا اب کیا کہنا وہ اپنے مسئلے کو تو تھوڑی دیر کے لیے بھول گیا حیران ہو کر کہا کہ مولا یہ کس چراغ کیوں گل کیا کہا یہ چراغ بیت المال کا تھا چنانچہ اگر کوئی مسلمانوں کا اپنا کوئی ایسا کلیکٹیو میٹر یا افیئر ہوتا تو اس میں تو یہ جل سکتا تھا لیکن اگر تیرا پرسنل میٹر ہے تو اس میں بیت المال کا چراغ نہیں جلے گا ہمارے یہاں ڈونیشنز چیریٹی صدقہ زکوٰۃ فطرہ خمس کا استعمال اب یہ ایک الگ موضوع بنے گا پورا لیکن یہ واقعہ اس لیے میں نے اس وقت پڑھا کہ یہ ہے غدیری اسلام جس میں اتنی زیادہ اہمیت ہوتی ہے حقوق الناس کی الاثر اسلامک سوسائٹی آف وکٹوریا میلبرن کی طرف سے میں ایک اعلان کر دوں جو میں پرسنلی میں نے ان سے ریکویسٹ کی ये मजालिस यहां हो रही हैं, जिन्हें सुनना है अल असल के फेसबुक पे आए या यूट्यूब चैनल पर, रिक्वेस्ट ये है कि यहां से इसको उठाकर किसी और चैनल पर, यूट्यूब पर, वेबसाइट पर शेयर ना किया जाए। ना मेरी तरफ से इजाजत है, ना अल असर की तरफ से। यकीनन आप कहेंगे कि मौलाना ये ऐलान करने की जरूरत क्या, आपकी मजलिस को यूं सुनने को तैयार नहीं है, तो कौन ऐसा है जो इसको कहीं और अपनी वेबसाइट पर या अपने चैनल के ऊपर शेयर करे। मैं भी आपके साथ एग्री करता हूं, लेकिन कल इसमें मैं बहुत बात कर चुका हूं, आज मजीद आपका वक्त नहीं लूंगा। आज कुरान करीम की जो आयत मैंने तिलावत की, उस आयत के बाद जो गदीरी इस्लाम को बता रही, उसके बाद जो आयत तिलावत की है, ये सूरह मुबारका मोहम्मद की एक मशहूर आयत है, और ये वो आयत है जिसकी के मैसेज को हम ज़ियारत वारिसा का एक जुमला बनाते हैं। आयत का तर्जमा है कि ऐ ईमान लाने वालों, अल्लाह की मदद करो, इन तंसुरुल्लाह, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे, यंसुरकुम, तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। मासूम से पूछा गया कि मौला हम और अल्लाह की मदद करें, ये तो तसव्वुर किसी के दिमाग में नहीं आ सकता। नून मीम राशिद का एक ऐसा बेतुका शेर है, वो अपनी जगह, लेकिन कोई इंसान भी चाहे वो अपना अमल के एतबार से कितना ही कमजोर क्यों ना हो, अगर अल्लाह पे अकीदा रखता है तो तसव्वुर के हम अल्लाह की मदद करें। इमाम ने कहा कि अल्लाह की मदद का मतलब है अल्लाह के दीन की मदद, और यही इमाम की हदीस ज़ियारत वारिसा का जुमला बना। और आज की रात ऐसी रात है कि दुनिया भर में आम तौर पर आज की रात से करबला के शहीदों के मसाइब शुरू होते हैं असाबे इमाम के, तो ज़ियारत वारिसा का जो तीसरा टुकड़ा है, तमाम शोहदा की ज़ियारत, अस्सलामु अलैकुम या औलिया अल्लाह व इब्बा, अस्सलामु अलैकुम या असबिया अल्लाह व विद्दा, अस्सलामु अलैकुम या अंसारा दीनिल्लाह, यही कुरान की आयत की तफसीर। कुरान कहता है अल्लाह की मदद करो, इमाम फरमाते हैं यानी अल्लाह के दीन की मदद करो, और हम करबला के शहीदों को याद करके कहते हैं हमारा सलाम तुम पर ऐ अल्लाह के दीन के मददगार, या अंसार दीन अल्लाह। लेकिन ये आयत मैंने इसलिए तिलावत नहीं की थी कि मैं इसकी तशरीह इस अंदाज से करूं कि दीन खुदा को किस तरह से मदद करना, वो एक अलग मौजू। मैंने आयत इसलिए तिलावत की थी कि कल जो बात हो रही है उसी को आगे बढ़ाइए। इमाम परवरदिगार की जानिब से इतनी ताकतें रखते हैं कि तन तनहा हर इनकलाब भी ला सकते हैं और तबलीग भी कर सकते हैं, मगर साथ ही जमा कर रहे हैं। रसूल वह तन तनहा और अकेले भी सारा फरीजा रिसालत अंजाम दे सकते हैं, मगर साथ ही जमा कर रहे हैं। और इन सबसे बढ़ के अल्लाह जो अला कुल्ले शैन कदीर, लगनी अनिल आलमीन, जो किसी का मोहताज नहीं है, सब उसके मोहताज हैं, वो अल्लाह भी कह रहा है कि और आकर मेरे दीन की मदद करो। तो यहां सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये दूसरों को इस मसले में क्यों इन्वॉल्व किया जा रहा। और जैसा कि कल मैंने कहा, मैदान करबला में आका हुसैन का ऐसे वक्त में ये कहना कि हल में नासिर है, कोई मेरी मदद करने वाला, जिस मकसद के लिए भी हुसैन मदद मांग रहे हैं वो हुसैन अकेले खुद भी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी इसकी मिसाल इमाम जमाना का हमें और आपको बुलाना, जैसे ही इमाम जाहिर होंगे, फातह खैबर का वारिस व बेटा है, अगर अली अकेले जाके खैबर का किला फतह कर सकते हैं तो इमाम जमाना भी अकेले वो सारा जिहाद कर सकते हैं, मगर बुलाएंगे, आवाज गूंजेगी और इंतजार करेंगे 3 दिन मक्के में, तो आखिर इसकी वजह क्या? इसकी वजह एक, बहुत सारी वजूहत होंगी, उसमें से एक वजह, इस्लाम यह चाहता है कि नेकी जितने ज्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व हो, अच्छा इस्लाम से मतलब है गदीरी इस्लाम, जितने ज्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व हो जाएं वो इस्लाम की निगाह में पसंदीदा। क्यों आखिर ज्यादा लोग? क्यों ज्यादा लोग? हमेशा प्रॉब्लम भी क्रिएट करते हैं, लेकिन पहले तो वो छोटी सी मिसाल सुन लीजिए जिसका मैंने कल हवाला तो दे दिया था कि हजरत अल्लामा रशीद तुराबी अल्लाह मकामहु जैसा बेमिसल खतीब, हैदराबाद दक्कन से ये सूरज तुलू हुआ, कराची में आके गुरूब हुआ, जवानी का जमाना बंबई की खिताबत छा गए, शाम गरीबा की जो मजलिस टेलीविजन पे पढ़ते थे एक मास्टर पीस, और उसमें आखिरी मजलिस यकीन, वहां पे हजरत इब्राहिम का वाकया बयान कर रहे हैं कि अल्लाह ने हजरत इब्राहिम को हुक्म दिया कि तुम्हें अपने बेटे को ज़बह करना, हुक्म मिला इब्राहिम को। अच्छा ये इमाम की हदीस है, लेकिन क्या करूं मेरी एक बुरी आदत ये कि मैं ये चाहता हूं कि अगर किसी और से इस्तेफादा करके कोई चीज आपके सामने पेश कर रहा हूं तो उसका इतना एहसान तो मानूं कि उसका तस्किरा मेंबर पे कर दूं। बहुत आसान हो जाता है ना कि सारी इधर उधर की चीजें जमा करके अपने नाम से पेश करके ये इंप्रेशन देना कि जैसे देखिए मेरी नॉलेज कितनी है और मैं कितनी अच्छी बातें बयान कर सकता हूं। अब अल्लामा रशीद तुराबी के इंतकाल को इतना अरसा गुजरा है कि दो जनरेशन गुजर गई, लेकिन नहीं, इनका एहसान है इन तमाम लोगों का। तो खैर वक्त आज ज्यादा नहीं लूंगा इसलिए कि अब ये संडे की नाइट है तो कल वर्किंग डे तो है, इसलिए मजलिस एक घंटे में पूरी होनी चाहिए। खुलासा ये, हजरत इब्राहिम को हुक्म मिला कि अपना बेटा ज़बह करना, कौन नहीं जानता? सूरह साफ़ात में पूरे वाकये की बड़े अच्छे अंदाज से तफसील, और भी कई जगहों पे है लेकिन सूरह साफ़ात में बहुत अच्छे अंदाज। सूरह साफ़ात आपको मालूम है ना कि सूरह यासीन का पड़ोसी है, यासीन है 36, साफ़ात है 37। मरने वाले के सराहने उसकी मुश्किल आसान करने के लिए सूरह यासीन के साथ सूरह साफ़ात की भी बड़ी ताकीद है, और इसाले सवाब के लिए भी सूरह साफ़ात की एक अहमियत। जैसे मैं अक्सर अपने मजलिसों में पढ़ता था कि हमारे यहां सूरह फातिहा और सूरह कुल अल्लाह तीन बार पढ़े, लेकिन सूरह इन्ना अंजलना भी मरने वाले के लिए बहुत फायदा पहुंचाता। मौजू से जरा हटा, वापिस आता हूं। इब्राहिम ने अपने बेटे इस्माइल को बुलाया और कहा कि बेटा मुझे यह हुक्म मिला, अब बता तेरी क्या राय है। सवाल यह है कि आखिर इब्राहिम को इस्माइल से बात करने की और उनको बताने की जरूरत क्या पेश आई? इस हुक्म का कोई ताल्लुक इस्माइल से तो नहीं बनता। अल्लाह है इब्राहिम को हुक्म दिया अपना बेटा ज़बह करना है, हुक्म इब्राहिम को है। ये तो नहीं कहा अल्लाह ने कि अपने इस्माइल से पूछ के ये काम करो। कितने ही अहकाम है दीन औरतों पे नाजिल होते, कहा शौहर से इजाजत लो और फिर ये काम करो। तो यहां तो ऐसा कुछ नहीं है ना, इब्राहिम एक हुक्म दिया है, इस्माइल भी अभी छोटे ही हैं। जाओ ले जाओ इस्माइल को, गले पे छुरी रख के ज़बह कर दो, तुमको हुक्म दिया, तुम्हें हुक्म पे अमल करना है। इस्माइल को आखिर इसमें क्यों इन्वॉल्व किया गया? तो हजरत अल्लामा रशीद तुराबी जिस अंदाज से बयान कर सकते बयान किया है, मैं तो बयान कर ही नहीं सकता, लेकिन खुलासा बात को फैलाने का क्या फायदा? कहा इसलिए कि अगर इब्राहिम इस्माइल को बगैर बताए ले जाते और ज़बह कर देते तो सारा अजर व सवाब इब्राहिम को मिलता। इस्माइल को इसलिए बताया, क्या अब इस अमल में, इस कुर्बानी में, इसमें हुक्म खुदा में इस्माइल का भी इन्वॉल्वमेंट हो जाए? अब जो अजर व सवाब है उसमें इस्माइल भी हकदार बनेंगे। کہ حکم خدا ملا ہے اور انہوں نے اس کے اوپر سارے تسلیم خم کیا. ہماری ذاکری کا ایک بہت 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 پرانا نقطہ, شاید شمس العلماء مولانا صفت حسن صاحب علی اللہ مقامہ کا یہ نقطہ بہت پرانا, حضرت علامہ رشید رابی سے پہلے جو ممبر کے اعتبار سے اہم ترین شخصیت شمس العلماء مولانا صفت حسن صاحب, حیدرآباد دکن کے مومنین تو میری مجلس نہیں سنتے لیکن اگر کوئی اتفاق سے بھولا بھٹکا سن لے تو یہ وہی صفت حسن صاحب ہیں جن سے نظام نے دوران مجلس پوچھا تھا کہ خندق کے میدان میں پیغمبر نے علی کو گھوڑا کیوں نہ دیا. یہ وہی صفت حسن صاحب. اور وہ یہ ہے کہ ابراہیم نے اسماعیل کو بتایا, یہ حکم خدا آیا, اور اسماعیل نے جو جواب دیا قرآن میں ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین, ستجدونی من الصابرین, بابا آپ حکم خدا پہ عمل کیجئے مجھے آپ صبر کرنے والوں میں پائیں گے. اور جب پیغمبر نے شب ہجرت علی کو بلا کے کہا تم میرے بستر پہ سو جاؤ, اور علی نے کہا کہ کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی, پیغمبر نے کہا ہاں, تو علی نے شکر کا سجدہ انجام دیا. ابراہیم کو اسماعیل کو اپنی موت نظر آ رہی, سامنا کرنے کو تیار لیکن یہ کہہ کر کہ میں صبر کروں گا, علی کو اپنی موت نظر آ رہی سامنا کرنے کو تیار ہے لیکن شکر کیا. صبر کیا جاتا ہے جب مصیبت آتی ہے, شکر کیا جاتا ہے جب نعمت آتی ہے. جسے اسماعیل جیسا نبی مصیبت سمجھ رہا ہے اسے علی جیسا ولی نعمت خدا سمجھ کے شکر کا سجدہ انجام دے رہا. یہ فرق ہوتا ہے نبوت اور ولایت میں. لیکن اسماعیل کو جو اس طرح سے شریک کیا اپنے اس عمل میں تاکہ ثواب ان کو بھی ملے, اور یہ اسلام کا ایک بہت بنیادی حکم ہے کہ جتنے زیادہ لوگوں کو ثواب میں شریک کرو, ثواب ہی تو وہ چیز ہے کہ اگر آپ اس میں لوگوں کو شریک کریں گے تو یہ کم نہیں ہوگا یہ بڑھے گا. یہاں پہ ڈیویژن نہیں ہے, ملٹیپلیکیشن ہے. لوگ کہیں گے بھائی مولانا وہ فلاں نیکی کا 100 کا ثواب ہے, اگر ہم نے کسی اور کو ملا لیا تو اس کو 50 ملیں گے تو ہمیں 50 ملیں گے. نہیں, 100 کے 200 ہو جائیں گے. نماز جماعت میں حدیث آتی ہے کہ اگر ایک آدمی جماعت پڑھے تو اتنا ثواب ہے, 2 پڑھے اس ثواب میں سے دوسرے کو نہیں ملے گا, وہ ثواب کتنا بڑھ جائے گا. 3 پڑھے تو ثواب کتنا بڑھ جائے گا. ہم جیسوں کو تو موقع بھی مل جاتا ہے مومنین کرام کی باتیں سننے کا. مولانا ہمارے والد کے اسال ثواب کی مجلس سے آپ نے اس میں 5 نام اور ملا دی تو بھائی کیا نقصان ہوا. کہا جی وہ والد کا ثواب تھا بڑھ گیا. بڑھتا نہیں ہے, بڑھتا ہے. ثواب تقسیم ہوتا ہے, حتیٰ یہاں تک روایت میں ہے اور فقہی مسئلے میں. آپ کسی کی طرف سے حج کر رہے ہیں, اس کو پورا حج کا ثواب ملا, اس کا ڈبل ثواب آپ کو ملا. حج ایک ہوا ہے, ثواب 3 بن رہے ہیں. خیر, تو یہ بات چھوٹی چھوٹی باتیں کبھی میرے ذہن میں آ جاتی ہیں تو میں آپ کا وقت ضائع کرتا ہوں. اب یہ نبی اکیلا ہر کام کر سکتا, امام اکیلا ہر کام کر سکتا, لیکن امام چاہتے ہیں کہ ہم اور آپ بھی اس ثواب میں شریک ہوں. جتنے زیادہ سے زیادہ لوگ شریک ہوں گے, امام ہمیں ثواب دلوانا چاہتے ہیں, رتبہ دلوانا چاہتے ہیں, فضیلت دلوانا چاہتے ہیں, جنت میں ہمارے اسٹیٹس کو ہائی کرنا چاہتے ہیں, اس لیے بلا رہے ہیں. اور اب تو حالات دنیا بتا رہے ہیں کہ شاید امام زمانہ کا ظہور بہت قریب آ رہا. ایک بات میں یہ عرض کر دوں کہ بہت ساری روایتوں میں ظہور کی کچھ ایسی نشانیاں بتائی گئی جو ہمیں اپنے زمانے میں لگتی ہے کہ بس یہ نشانی تو اب ایسی یقینی لگ رہی, لیکن نشانیاں ریپیٹ ہو سکتی ہیں. میں تو کب سے یہ کہہ رہا تھا کہ امام کے آنے سے پہلے حج پر پابندیاں لگیں گی, لیکن کتنے سارے لوگ یہ نظریہ رکھ کے بیٹھے تھے کہ حج کبھی نہیں رک سکتا, جب رکے گا تو امام آ جائیں گے. مجھے یاد ہے کہ بھرپور طریقے سے یہ بات میں نے 91-92 میں جو کویت کے حالات ہوئے تھے اور پھر امریکن فورسز نے عراق پہ اٹیک کیا تھا, और गल्फ की सिचुएशन कुछ ऐसी बनी थी कि शायद उस साल हज नहीं हो। अब मैंने उस वक्त से यह सिलसिला शुरू किया, दो बातें बताई। नंबर एक ये कि किसी रिवायत में यह नहीं है कि हज अगर रुक गया तो उसी साल इमाम आए। और नंबर दो, इससे पहले भी हिस्ट्री में कितनी बार हज बंद हो चुका, अब तो खैर कहने की जरूरत नहीं। इस साल जो हज जिस अंदाज से हुआ उससे पहले ही इतनी ज्यादा यूट्यूब पर और व्हाट्सएप ग्रुप में और सोशल मीडिया पर और आम मीडिया पर भी हिस्ट्री आती रही कि इससे पहले कितनी दफा हज को रोक दिया गया। लेकिन यह है कि जब हज रुका जिस जमाने में, तो लोग समझते थे कि भाई बस अब इमाम करीब आने, इमाम का जहूर करीब आना। बगदाद शहर की तबाही, बगदाद एक ऐसा शहर कि जहूर इमाम से पहले उसकी तबाही को यकीनी करार दिया गया, बल्कि बगदाद के बनने से पहले उसकी तबाही को यकीनी करार दिया गया। बगदाद एक नया शहर, जैसे हमारे पाकिस्तान में इस्लामाबाद, जैसे ऑस्ट्रेलिया में कैनबरा, जैसे इंडिया के हरियाणा में चंडीगढ़, तो बगदाद अभी बना भी नहीं है। कब बनेगा? मंसूर दवानिकी के जमाने में, तकरीबन अराउंड 140 हिजरा। और मौला की शहादत कब हुई है? 40 हिजरा, 100 साल पहले मौला ने कई खुतबात में बगदाद की तबाही का जिक्र किया। एक चीज अभी बनी नहीं है और मौला तस्किरा कर रहे हैं। यही गदीरी इस्लाम, जो ऐसे को हम मानते हैं कि सारी कायनात का इल्म रखता। लेकिन बात यह हो रही थी कि बगदाद, और जब बगदाद की तबाही सामने आती है, लोग कहते हैं देखिए ये तो वाकई ये यकीनी निशानी है बगदाद की तबाही। लेकिन बगदाद को एक बार तबाह हुआ। इंडिया का एक शहर है दिल्ली, कहा जाता है 7 मरतबा दिल्ली लूटी है। बगदाद भी कई मरतबा तबाह हुआ और हर दफा की तबाही में लोग ये समझे कि बस अब देखिए ये यकीनी निशानी पूरी हो गई, अब इससे ज्यादा क्या ये तबाह होगा। हमने देखा दोबारा बना, फिर रौनक हुई, पहले से ज्यादा रौनक हुई और पहले से बड़ी तबाही है। ये मैं इतनी तमहीद क्यों बांध रहा हूं? आज का मेरा मौजू इमाम जमाना नहीं, आज का मेरा मौजू जहूर की निशानियां नहीं, आज का मेरा मौजू पाकिस्तान में एक जुमला अक्सर कहा जाता है, कहने वाले की नियत खुदा मालूम, कुछ अच्छे लोग भी कहते हैं कुछ बुरे लोग, लेकिन उसका असर यह बनता है कि वाजिबात वगैरह की पाबंदी की कोई खास जरूरत नहीं। वो एक जुमला, खाली एक जुमला उससे वहां तक पहुंचने के लिए। जहूर इमाम की बहुत सारी निशानियां, ये मेरा मौजू ही नहीं, यानी आज की हद तक नहीं है, वरना तो मैं बहुत ज्यादा इस पर बात करता हूं। इसमें एक बात सुन लीजिए, क्योंकि मैं 45 साल से जहूर इमाम जमाना पे बात करता चला आ रहा हूं, ये कोई बड़ाई नहीं से बता रहा, ये कोई मैं फख्र नहीं कर रहा, ये कोई मैं तकब्बुर नहीं कर रहा, ये मैं अपना कोई प्रोपेगेंडा नहीं कर रहा। लेकिन चूंकि अक्सर लोग मुझे उसी स्पीच से जानते हैं जो 1975 में मैंने अंजुमन खुद्दाम मोहम्मदी वेलफेयर सोसाइटी पंजाबी क्लब खारदर में की थी, सीरत अंबिया सीरत मासूमीन पे 22 स्पीचेस, 21वीं इमाम जमाना पर थी, 22वीं इमाम जमाना के जहूर पर थी। अक्सर लोग, इसलिए ये कोई ऐसी नई बात मैं नहीं कह रहा कि कहेंगे कि मौलाना अपना प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, 45 साल से 45 साल बहुत निशानियां बताई, बहुत साइंस बताए। तो बाद लोगों ने एक सवाल किया, जरा जो मेरे बेतकल्लुफ किस्म के साथी थे, मौलाना आप वो निशानी बताइए जो बिल्कुल जहूर के करीब। अब आपको याद होगा कि इस साल भी अल असर में शाबान के महीने में जब इमाम जमाना का मैं जिक्र कर रहा था, मैंने कहा था कि देखिए जहूर की निशानियां तो ऐसी कि निशानी पूरी भी हो जाए तो हम समझते हैं निशानी पूरी हो गई तो कल इमाम आएंगे। सबसे यकीनी निशानी जहूर इमाम की क्या? पैगंबर इस्लाम का ऐलान रिसालत, 1400 साल तो गुजर गए। बरादरान अहले सुन्नत की आई हदीस है کہ پیغمبر نے کہا کہ قیامت کی سب سے یقینی نشانی میرا اعلان رسالت. 1400 سال تو گزر گئے. تو اب جو ظہور کی نشانیاں ہیں اس کی دو قسمیں. ایک تو وہ کہ کہا کہ امام اس کے بعد آئیں گے. اب بعد کا مطلب کیا ہے؟ 5 سال بعد، 100 سال بعد، 500 سال بعد، یا اس واقعے سے پہلے نہیں آئیں گے، بعد میں آئیں گے، اس میں کوئی ٹائم لیمٹ نہیں. اور کچھ ایسی نشانیاں کہا کہ بالکل یہ ظہور کے قریب ہوگی. مثلا سفیانی کی حکومت. برادران اہل سنت کی ہاں ظہور امام سے ریلیٹڈ حدیثوں میں دجال کا تذکرہ زیادہ. ہمارے ہاں دجال کا ذکر ہے لیکن کم. ہمارے ہاں زیادہ ذکر ہے سفیانی کا. سفیانی ایک ظالم بادشاہ ہے جو امام کے آنے سے پہلے مڈل ایسٹ میں اپنی حکومت قائم کر کے شیعوں کا قتل عام کرے. یہ ہمارے ہاں زیادہ حدیثیں. برادران اہل سنت کے ہاں سفیانی کا ذکر بہت کم ہے، وہاں دجال کا بہت ذکر ہے. لیکن ہمارے ہاں جو حدیثیں ہیں سفیانی کا ذکر بھی بہت زیادہ ہے، اور یہ لفظ بھی ہے کہ یہ امام کے ظہور کے بہت قریب ہوگا. کتنا قریب؟ امام نے کہا کہ سفیانی کے آنے کے بعد 9 مہینے کے اندر اندر میرا بیٹا آ جائے گا. 9 مہینے. تو 8ویں امام سے راوی نے پوچھا، یہ 8ویں امام کی حدیث ہے اب جو پڑھ رہا ہوں، ورنہ سفیانی کی حدیث تو کئی معصومین کی. راوی نے پوچھا کہ مولا تو 9 مہینے کے اندر، تو 9 مہینے اور مثلا 9 مہینہ پورا ہو کے آخر میں. امام نے کہا 8 مہینے اور 29 دن، 8 months and 29 days. 9 مہینہ شروع نہیں ہوگا، اور ہو سکتا ہے 6 ہی مہینے بعد آ جائیں، 4 ہی مہینے کے بعد آ جائیں. میکسیمم سفیانی کے بعد 8 مہینے اور 29 دن، یعنی 9 مہینے کے اندر امام آ جائیں گے. یہ بہت قریبی نشانی ہے صرف 9 مہینے. یا یہ کہ مثلا نفس زکیہ کی مکے میں شہادت. نفس زکیہ کسی کا نام نہیں. عربی میں نفس کے معنی ہوتے ہیں کوئی پرسنالیٹی، زکیہ معنی زکی، پاک و پاکیزہ، پوائس. تو بہت سارے پوائس لوگ تاریخ اسلام میں پاسٹ میں بھی شہید ہوئے ہیں، اور امام کے آنے سے پہلے بھی مختلف علاقوں میں شہید ہوں گے. ایک کوفے کے اندر بھی ایک پاک و پاکیزہ انسان، یعنی بہت متقی، بہت ہی پرہیزگار شہید کیا جائے گا. جب چند سال پہلے حجت الاسلام آغائے باقر الحکیم بم کے دھماکے میں شہید ہوئے، تو کافی نشانی ان پہ پوری اتر رہی تھی جو کوفے میں شہادت ہونے والی. تو نفس زکیہ یعنی کچھ پاک لوگ دنیا کے مختلف علاقوں میں شہید ہوں گے، لیکن وہ ظہور کی نشانی تو ہے، یہ نہیں ہے کہ اس کے کتنے دنوں بعد امام آئیں گے. لیکن آخر میں ایک نفس زکیہ مکے میں شہید ہوگا، اور خانہ کعبہ کے صحن میں ایک پاک انسان، ایک مقدس انسان، ایک پوائس انسان. روایت میں یہ ہے کہ اس کی شہادت کے بعد پروردگار عالم اتنا جلال میں آئے گا کہ within 2 weeks امام ظاہر ہو جائیں گے. بہت شارٹ ڈیوریشن رہا اس نشانی میں اور امام میں. تو کسی نے مجھ سے کہا، اور ایک زمانے میں تو ہنسی مذاق میں بہت ساری باتیں لوگ سیریس بھی کہہ جاتے تھے، کہ مولانا وہ آپ وہ والی حدیثیں تو نہیں بتائیے کہ جس کے بعد یہ پتا نہیں چلتا کہ ابھی اور کتنے دن ہمیں انتظار کرنا. آپ نے ایک نشانی بتائی، کہا اس کے جو 500 سال بعد امام آئیں گے، تو وہ نشانی ہمارے لیے تو بیکار ہو گئی نا، ہم 500 سال تو نہیں جیئیں گے. ہمیں تو شارٹ شارٹ نشانیاں بتائی جو بالکل قریب قریب کے زمانے میں ہوں گی. میں نے کہا کہ بھائی وہ کیوں؟ کہا اس لیے، اب یہ وہ مومن ہے جو ذرا سی معرفت رکھتا. کہا کہ مولا کے آنے کے بعد تو ہمیں اسی وقت امام کی آرمی جوائن کرنے کی پرمیشن ملے گی جب ہم اس سٹینڈرڈ کے ہوں جو کربلا کا ایک سٹینڈرڈ تھا. تو ابھی سے اپنے آپ کو ہم بدلیں تو کیا فائدہ؟ मालूम हुआ कि हमने एक निशानी देखी, अरे इमाम करीब आ रहे हैं, नमाजें भी शुरू हुआ, दाढ़ी भी रख ली और औरतों ने हिजाब भी कर लिया और बच्चे की बर्थडे पार्टी में भी मिक्स गैदरिंग को निकाल फेंका और गाने बजाने बंद किए और डिस्को डांस बंद किया और गीबतें बंद कर दी। पता चला ऐसी निशानी है जिसके 80 साल बाद इमाम आएंगे, तो हम तो 80 साल ऐसे बेवकूफ बने बैठे रहे। कभी लोग इसी अंदाज से दीन की बातें करते, मरण ऐसी निशानी बताइए जो आसान हो। 9 महीने ठीक है, 15 दिन ठीक है, पूरे जिंदगी ऐश करो, आराम करो, गुनाह करो, एंटरटेनमेंट करो, शैतान के रास्ते पे चलो, जब 15 दिन रह जाए तो तौबा करके इमाम को ज्वाइन कर लेना। कितने ही लोग ऐसे हमारे यहां जो कहते हैं कि जी हाँ नेकियां करेंगे बुढ़ापे में जाके। पाकिस्तान और इंडिया दोनों जगह एक जमाने में हज तक के बारे में था कि हज बुढ़ापे में करना। उसका रीजन क्या था? तो मैंने तो बहुत बूढ़ों को हज कराए हैं ना, जब मैं खुद जवान था। ये वो बुढ़ापे में इसलिए कि हज के बाद तो फिर गुनाह नहीं करना चाहिए। अगर 30 साल की एज में हज करके बैठ गए तो सारी जिंदगी ही तबाह हो गई। फिर करो जाके 70 की एज में, 90 की एज में, फिर गुनाह से बचना आसान भी है क्योंकि जिंदगी बहुत थोड़ी रह जाएगी और ऑनेस्टली स्पीकिंग फिर तो गुनाह की ताकत भी नहीं होगी। उस एज में जाके कहां गुनाह की ताकत होती है। अंधा आदमी बहुत खुश होता है मैंने आज नामहरम को नहीं देखा, और बहरा आदमी बहुत खुश होता है मैंने गाने नहीं सुने, और लंगड़ा आदमी बहुत खुश होता है कि मैं डांस नहीं करता हूं। अरे भाई अब तुम इस काबिल भी नहीं रहे कि गुनाह करना चाहो तो गुनाह करो। तो एक तसव्वुर था कि हज के बाद अपने आप को चेंज कर देना, गुनाह नहीं करना, तो हज करो उस एज में जाकर, जवानी में जवानी के मजे लौट लो फिर जाके हज कर लेंगे। तो हज के अलावा भी एक कंसेप्ट लोगों के जहन में, यही ये भी एक वजह है कि अल्लाह ने कभी हमें मौत का वक्त नहीं बताया ताकि हर वक्त आदमी तैयार बैठे। अगर हमें मौत का वक्त पहले से मालूम हो जाता तो एक तो वो तमाशा होता जो हजरत मूसा के लश्कर में हुआ, वो एक अलग रिवायत है, टाइम नहीं, मगर वो तो काफिर थे, जिन्हें उनकी मौत का वक्त मालूम हो गया तो उन्होंने क्या तमाशा किया। काफिरों को छोड़े मोमिनों की बात, बहुत आसान हो जाता हमारे लिए। अगर हमें पता चल जाता कि हमारी मौत होगी 2035 में तो 2034 तक दिल खोल के गुनाह करते। जब अल्लाह की रहमत इतनी वसी है कि मरने से एक दिन पहले भी तुम्हारी तौबा कबूल है, तो ये तो एक बेवकूफी हुई ना कि पूरे 70 साल अपने आप को तकवे की रस्सी में बांध के बैठे रहो। नहीं, 69 ईयर तक गुनाह करो, आखिरी साल तौबा कर लो। अगर पता होता कि मौत आएगी कब। अच्छा उसके दूसरे बेनिफिट अपनी जगह है, और भी बड़ी हमको आसानियां हो जाती अगर मौत का वक्त मालूम होता। अल्लाह बंदे को आसानी देना चाहता है लेकिन इन आसानियों के नतीजे में बंदा गुनाह करेगा। आसानियां क्या होती? भाई हम सुपर मार्केट में जाते हैं, खाने पीने की कोई चीज उठाते हैं, पहले देखते हैं डेट ऑफ एक्सपायरी क्या है। अब अगर बच्चा पैदा होता उसके साथ ही अल्लाह उसकी डेट ऑफ एक्सपायरी भी साथ में भेज देता, पेशानी पे लिखा हुआ आ जाता, जैसे जहूर इमाम के बाद हर एक की पेशानी पे आ जाएगा ना कि हाजा मोमिनुन अगर मोमिन, हाजा काफिरुन अगर काफिर है। या ये कि बच्चे के पैर के ऊपर लिखा हुआ आ जाता, जैसे मुर्दा खाने में मुर्दों के अंगूठे के अंदर वो टैग लगाया जाता है, लिखा हुआ जाता ये बच्चा आज पैदा हो रहा है। मसलन आज किसी के घर बच्चा पैदा हुआ, जब पैदा होता है साथ में उसकी एक्सपायरी डेट भी होती है कि 2020 में पैदा हुआ है, 2080 में जाके ही मरेगा। कितनी आसानियां हो जाती। खानदान में कोई शादी होती, लोग उसको कार्ड देने जाते, कहते कि नहीं भाई आप ये शादी 1 महीने पहले कर ले। क्यों? कहा जो आपने डेट बताई है तो मेरी एक्सपायरी हो चुकी होगी। हमारे फंक्शन खराब होते हैं कि नहीं होते? किसी ने अपनी बेटी की शादी रखी, आज की दुनिया में आधा खानदान अगर मुल्क में है तो आधा दुनिया में फैला। अब ये बच्ची है तो इसके मसलन चचा है, ताया है, मामू है, खाला है, कोई कनाडा, कोई अमेरिका, कोई ऑस्ट्रेलिया, कोई न्यूजीलैंड, कोई पता नहीं कहाँ कहाँ, वो सबको बुलाया जा रहा है। तो अब स्कूल हॉलीडे हो और इसको जॉब से छुट्टी मिले, वो सारी डेट फिक्स की जाती। भाई सारे रिश्तेदार आए तो बहुत अहम शादी है खानदान, रिश्तेदार पहुंचे पता चला इस बच्चे का बाप मर गए। अब आजकल तो मजबूरी में लोग फिर भी शादी कर देते हैं, लेकिन कुछ अरसे पहले तक शादी कैंसिल। और अगर पहले से मालूम हो जाता है कि ये जो बाप है ना ये किस दिन एक्सपायर होने वाला है, कब मरने वाला है, उससे एक महीने पहले शादी की डेट रख लेते। आज भी ऐसा होता है, कुछ ऐसी बीमारियां हैं कि डॉक्टर्स कह देते हैं कि भाई इसकी यकीनी मौत है 6 महीने में। तो इस किस्म के सारे फंक्शन कि भाई माँ है अपनी बेटी को दुल्हन बनते देख ले उससे पहले ही रख लो उसकी शादी, तो कितनी आसानियां होती। मगर आसानियों का नतीजा ही निकलता कि अगर हमें अपनी एक्सपायरी डेट मालूम हो जाती तो उससे एक हफ्ते पहले तक हम दिल खोल के गुनाह करते। अच्छा आप देखिए, जो अल्लाह की मारिफत रखता है वो अल्लाह की वजह से गुनाह नहीं छोड़ेगा, गुनाह छोड़ेगा। जो रसूल और इमाम की मारिफत रखता है वो उनकी वजह से गुनाह छोड़ेगा। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं ना जो इसलिए गुनाह से बचते हैं कि कब्र का अजाब है, कयामत का अजाब है, या इमाम को क्या मुंह दिखाएंगे, या रसूल को क्या जवाब देंगे, तो उनके लिए बड़ी आसानी होती है। अल्लाह ने कहा इसीलिए डेट नहीं बताऊंगा, हर मिनट तैयार रहो। ये तुम कह रहे हो बुढ़ापे में तौबा करूंगा, तो तुम्हें यकीन है कि तुम बूढ़े हो गए, कल मर सकती हो? तुम्हें यकीन है कि बुढ़ापे में हज करूंगा, बूढ़े हो गए, अगले महीने मर सकती हो? तो हर वक्त हम तैयार रहें। जहूर है इमाम की निशानी का मौलाना ये उसमें ना होने पाए, तो आप हमें जहूर की वो निशानियां बताइए जो बिल्कुल करीब करीब, ताकि फिर हम उस वक्त अपने आप को चेंज कर लें। हैं नफ्से जकिया की शहादत का सिर्फ 2 हफ्ते में इमाम आई, सुफियानी की हुकूमत का सिर्फ 9 महीने में इमाम आई, या ये वाली एक निशानी मैं पढ़ रहा हूं, ये भी है कि बिल्कुल इमाम के करीब होगी। अब हो सकता है कि आज जो दुनिया के हालात हैं ये वही हो सकता है ये दोबारा कभी होने वाले हों। एक निशान, अच्छा ये बड़ी अजीब निशानी दज्जाल के लिए मैंने कहा कि ज्यादातर बरादरान अहले सुन्नत के यहां, सुफियानी के लिए कहा ज्यादातर शियों के यहां। ये वो निशानी है जो शियों की यहां भी है, सुन्नियों की यहां भी है, क्योंकि कुरान करीम में आ गई। कुरान में दज्जाल का नाम नहीं आया, कुरान में सुफियानी का नाम नहीं आया, ये निशानी आई। क्रिश्चियंस में भी है, बाइबल में आई ये निशानी, जूज में भी है, इसलिए कि ओल्ड टेस्टमेंट में आई है ये निशानी। और वो क्या है? याजूज ओ माजूज, गोग और मेगोग। आखिरी जमाने में दज्जाल आएगा, आखिरी जमाने में सुफियानी आएगा, आखिरी जमाने में याजूज ओ माजूज आएंगे। दज्जाल सुफियानी का इतना तस्किरा नहीं है ओल्ड टेस्टमेंट में, दज्जाल का एंटी क्राइस्ट कह के है थोड़ा सा, लेकिन इतना नहीं। याजूज और माजूज पे तमाम इब्राहिमी मजहब मुत्तफिक हैं, चाहे यहूदी हो, चाहे ईसाई हो, चाहे मुसलमान, और मुसलमानों के भी सारे फिरके मुत्तफिक हैं, क्योंकि कुरान में एक जगह नहीं 2 जगह याजूज और माजूज का तस्किरा हुआ। कालू याजल करनैन इन याजूज व माजूज मुफ्सिदून फिल अर्ज, पहले सूरह कहफ में हुआ कि जब ज़ुल्करनैन उस इलाके में गए, कहा कि याजूज और माजूज ने जमीन में तबाही बपा कर रखी है, हमें इनसे बचाओ। और दूसरा इससे अहम ये तो बात है, पहला जिक्र आया सूरह कहफ में, 18 नंबर का सूरह, ये बात है पास्ट की, बहुत पुरानी। और सूरह अंबिया में तस्किरा आया ज़हूर इमाम की, फ़ाइज़ा फ़ुतिहत याजूज व माजूज व हुम मिन कुल्ले हदब यंसलून, सूरह अंबिया की आयत। अच्छा ये जरा मुझे ये आयत बचपने से गलत याद कराई गई है, तो मैं कभी इसको गलत भी पढ़ देता हूं, यानी ज़ेर ज़बर फ़ुतिहत याजूज व माजूज व सीगा मजहूल को सीगा मारूफ पढ़ता हूं, लेकिन खैर वो एक अलग सब्जेक्ट है, कल बात करूंगा या परसों। आयत का तर्जमा क्या है? कयामत का तस्किरा कुरान कर रहा, कयामत के करीब का, जस्ट बिफोर जहूर, कहा कि जब याजूज व माजूज को खोल दिया जाएगा। पहली आयत में था याजूज व माजूज को बंद कर दिया गया, लोगों ने कंप्लेन की तो हजरत ज़ुल्करनैन ने एक बहुत बड़ी दीवार बना दी। और अब कुरान कहता है आखिरी, देखिए ये वो निशानी है जहूर इमाम की जो किसी हदीस में नहीं आई है, कुरान की आयत में, نعوذ باللہ میں حدیث کی توہین نہیں کر رہا ہوں, لیکن قرآن کی آیت اور حدیث کے اسٹیٹس میں ایک فرق تو ہے نا. کہا قیامت کے قریب فوتحت یاجوج و ماجوج, یاجوج و ماجوج گوگ اور میگوگ کو کھول دیا جائے گا. وہم من کل حدب ینسلون, اور وہ ہر حدب سے, حدب حدب ہے دال با, حدب سے دوڑ کے آئیں گے. جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا ادب اور احترام, وہ ادب کے الف کو ہٹا کے ہے لگا دیں, ادب سے دوڑ کے آئیں گے. اب یہ خود ایک لفظ تشریح طلب, ادب کے معنی ہیں عربی میں بلندیوں سے. وہ کسی ایسے علاقے میں آئیں گے جہاں کوئی پہاڑ وہاڑ بہت ہوں گے, وہاں سے وہ آئیں گے دنیا میں. اور ادب کے ایک معنی ہے مچھلی جیسا جسم, یعنی جس کے اندر بیج کا جسم جو ہے نا وہ ابھرا ہوا ہو. غالباً انگریزی میں اسے کہتے ہیں کونکوو لینس. جو لینس لگتا ہے چشمے میں, اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں, ایک ہوتا ہے مہدب جو بیج سے ابھرا ہوا ہوتا ہے مچھلی کی طرح سے, مچھلی کا ایک ہیڈ ہے ایک ٹیل ہے بیج میں ابھرا ہو. اور اگر آپ دیکھیں گے تو ایروپلین کی شکل اس سے ملتی جلتی. تو بعض علماء نے یہ تفسیر کی کہ بھائی جب علماء نے, پرانے علماء نے اس آیت کا ترجمہ کیا, اس وقت تو ایئر کرافٹ یا ایئر پلین تھا ہی نہیں دنیا میں بلندی. اب بعض نے کہا کہ نہیں, تو بہت اشارہ ہے کہ وہ آخری زمانے میں وہ ایئر پلین بنیں گے اور اس میں بیٹھ کے وہ آئیں گے. یاجوج و ماجوج ایک ایسی قوم ہے جو آخری زمانے میں کھول دی جائے گی, یعنی جہاں پہ وہ رہتے ہیں وہاں سے وہ نکلیں گے, اور ین سلون دوڑ کے نکلیں گے, دنیا میں چھا جائیں گے. اور یہ ظہور امام کی اتنی یقینی نشانی ہے کہ یہاں تک روایتوں میں کہ ان کے زمانے میں ہی امام آئیں گے. اور اس کی پانچ نشانیاں بتائی گئی ہیں خود یاجوج و ماجوج کی. نشانیاں کہی ہے کہ پہچان, کہ کسے کہتے ہیں یاجوج ماجوج. یہ بہت دلچسپ موضوع ہے, پورے ایک گھنٹے کی میری ایک تقریر ہے اس کے اوپر. آج تو ضمناً بات اس لیے بھی آ گئی کہ کوئی کورونا سے مجھے یہ میچ کرتا نظر آ رہا ہوں, اور یہ کہ امام لوگوں کو مدد کے لیے بلائیں گے تو شاید وہ وقت قریب آ گیا. ایک جملے نے میرے دل کو زخمی کر دیا ہے, پاکستان میں پڑھا جاتا ہے اس لیے اتنا میں بول رہا ہوں, وہ جملہ بھی آ رہا. یاجوج ماجوج کی پانچ خصوصیات, کیسے پہچانے کون سی قوم یاجوج و ماجوج, روایتوں میں پانچ ہے. نمبر ایک, یہ ایک عجیب قوم ہوگی دنیا کی جن کے پاس کھانے پینے کا کوئی اٹیکیٹ وغیرہ نہیں ہو. یہ دنیا کی ہر چیز کھا لیں گے, ہر جانور کھا لیں گے, سانپ کھا لیں گے, کیڑے مکوڑے کھا لیں گے, مینڈک کھا لیں گے. حلال حرام تو چھوڑو, کوئی گھن بھی نہیں آئے گی کسی جانور سے. کا ایک ایسی قوم ہے, مانا دنیا کی ہر قوم میں کھانے پینے کا ایک طریقہ ہوتا ہے, کچھ چیزیں ان کے یہاں پسندیدہ کچھ ناپسندیدہ. ان کے یہاں زمین پہ چلنے والے جانور, ہوا میں اڑنے والے پرندے, زمین پہ رینگنے والے حشرات الارض, کئی ان کی پہلی پہچان ہے. دوسری پہچان یہ, یہ آخری زمانے میں آئیں گے, پہاڑ اور لوہے پہ ان کو بڑا کنٹرول ہوگا. اب میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں لیکن نام لینے پہ مجبور. یہ نہیں کہہ رہا ہوں آج کل ہے, ہو سکتا ہے کہ 100 سال کے بعد پھر ایسا کچھ ماحول بنے. چائنا, ریلوے لائن, جتنی ترقی چائنا نے کی ہے کچھ بھی نہیں, دنیا کا دنیا میچ ہی نہیں کر سکتی. جاپان کی ایک بلٹ ٹرین مشہور ہے چائنا, ایسی ایسی جگہ, وہ تبت جیسے اونچے پہاڑوں پر کتنے آرام سے ریلوے لائن لے کے گئے, سمندروں میں, دریاؤں میں, پہاڑوں میں, لوہا پورا ان کے ہاتھ پہ کنٹرول. پورے مڈل ایسٹ میں جتنی ریلوے لائن آج کل بچھائی جا رہی ہے سب میں چائنا کا حصہ. لیکن میں تو بات کر رہا ہوں کہ مشکل ترین ریلوے لائن دنیا کی, جائیے یوٹیوب کے اوپر, اور اسی انداز کی کوئی انگریزی عبارت ٹائپ کیجئے کہ موسٹ ڈیفیکلٹ یا موسٹ مشکل ڈرانے والی ریلوے لائن, زیادہ تر آپ کو چائنا کی ملے گی. اور پہاڑ ایسے بڑے بڑے, ایسے سخت, ایسے خطرناک پہاڑ, اس پر سے راستے بنائے, اس پہ پل بنائے, اس پہ سرنگیں بنائی. کہا جاتا ہے کہ اس وقت جو نیپال اس طرح سے انڈیا کے مقابلے میں آ گیا چائنا کی وجہ سے, کیونکہ نیپال لینڈ لاک تھا, اس کو پورٹ چاہیے انڈیا کے ذریعے ملتی, کیونکہ اس کے دوسری طرف ایسے پہاڑ ہیں کہ آدمی وہاں سے سامان لا ہی نہیں سکتا, चाइना ने कहा कि नहीं घबराओ नहीं, हम इन पहाड़ों में तुम्हें ऐसी सुरंग बना के देंगे जो तुम्हें दूसरी पोर्ट तक ले जाएगी। खेल ये चीजें चाइना 20-20 दिन में वो स्टील की 40-40 मंजिला पूरी बिल्डिंग खड़ी कर देते हैं। अब मैं कोई किसी मुल्क का ना प्रोपेगेंडा कर रहा हूं ना अगेंस्ट बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि हदीस में है कि याजूज माजूज खाना, फिर ये उनका कंट्रोल। तीसरी चीज का उनके कान बहुत बड़े होंगे। अच्छा ये इमाम का एक प्रॉब्लम समझिए, 1400 साल पहले के जाहिल बद्दू अरबों में बैठकर अगर आखिरी जमाने की कोई चीज समझाना चाहे जो उनकी समझ में नहीं आ सकती, कैसे समझा? कान। अब कान किसे कहा जाता है? कान का मतलब है हेयरिंग वाला ऑर्गन जो आवाज सुनता है। तो कान से मतलब वाकान इतने बड़े बड़े कान होंगे जितने हमारे बेड होते हैं या मैट्रेसेस होते हैं, या कान से मतलब यह है कि वो मोबाइल टेक्नोलॉजी में इतनी तरक्की करेंगे। अभी इस वक्त जो दुनिया में कोरोना 5 का प्रॉब्लम हुआ, G5 टेक्नोलॉजी पे इसकी जिम्मेदारी डाली गई। यूरोप में तो कितनी जगह इसके टावर जला दिए लोगों ने, और इसमें चाइना इस वक्त कितना आगे। और इसके अलावा भी जो मोबाइल टेक्नोलॉजी कान सुनने आवाज, और भी कुछ चीजें बताई जाती है कि उनके पास ऐसे डिवाइसेस हैं, लेकिन मेरे पास वक्त नहीं। याजूज और माजूज की चौथी खासियत यह बताई जाती कि जब ये 3 मरलों से गुजर जाएंगे तब ये जाएंगे स्पेस में आसमानों की जानिब, कि अब हमें आसमान फतह करना। अगर आप देखिए तो न्यूज तो यही आती, क्या वो चांद की जानिब रॉकेट भेज रहे हैं, वो मार्स का मिशन बना रहे हैं। लेकिन आखिरी बात मुझे खास बयान करना थी, कहा कि ये तादाद में इतने ज्यादा होंगे कि इनके पॉपुलेशन की वजह से इनका कोई मुकाबला कर ही नहीं पाएगा। मैंने सुना है, शायद गलत सुना, कि जब चांद पर अमेरिकन अपोलो उतरा था 69 में, तो चीन वाले वहां पहले से मौजूद थे। वो नील आर्मस्ट्रांग ने शायद पूछा, भाई तुम कैसे, तुम्हारे पास तो रॉकेट ही नहीं है। कहा रॉकेट की क्या जरूरत, हम एक दूसरे के कंधे पे खड़े होते गए तो पहुंच गए। मकसद ये कि ये पॉपुलेशन, तो कहा इतनी इनकी तादाद होगी, किसकी, चीन की बात नहीं कर रहा हूं, याजूज और माजूज की, दुनिया का कोई मुल्क मुकाबला ही नहीं कर पाएगा। लेकिन फिर अल्लाह एक बीमारी भेजेगा बहुत ही छोटे कीड़े की मदद से, बहुत छोटा कीड़ा, यानी मच्छर से भी छोटा, क्योंकि मच्छर जैसा होता तो इमाम नाम ले लेते। नमरूद के वाकये में मच्छर का नाम लिया कि नहीं लिया, उससे भी छोटा। अब जरा सोचिए कि अगर कुछ इमाम वायरस वगैरह की बात करना चाह रहे हैं तो उस वक्त के जमाने में तो यही कहेंगे ना। और कहा कि ये इतना छोटा कीड़ा इनके नाक और मुंह के जरिए से इनके बदन में दाखिल होगा। भाई हम तो इस वक्त मेलबर्न में मस्जिद पढ़ रहे हैं, अब मेलबर्न के अंदर फेस मास्क लाजिम करार दिया गया है। अगर आप घर से बाहर जा रहे, नाक को भी छुपाइए मुंह को भी छुपाइए। मेरी ये फील्ड भी नहीं है, मुझे बोलना भी नहीं चाहिए, लेकिन रिवायत में जो याजूज माजूज की पहचान बताई गई है, कैसे पहचानो? पांचवी चीज, तादाद बहुत ज्यादा है, कोई इनको खत्म नहीं करेगा, छोटा सा कीड़ा जो इनके जिस्म में दाखिल होगा नाक और मुंह की मदद की तरफ से, और इनको इस तरह मार देगा जैसे ताऊन की बीमारी में लोग मरते हैं, प्लेग। कोरोना से पहले दुनिया की तबाही में एक स्पेनिश इन्फ्लुएंजा का हिस्सा था, लेकिन वो भी लिमिटेड था। कोरोना से पहले जो बीमारी दुनिया में आई है वो ताऊन प्लेग की आई है, जिसका नाम ही है ब्लैक डेथ, यूरोप में 16th century। किस कसरत से मौतें हुई, इंडिया तक पहुंचा था ये, तो जैसे आज है ना कि हर दुनिया के हर इलाके में पहुंच रहा। कहा जैसे ताऊन की तरह से ये लोगों का खात्मा करें, बस्तियां घर उजड़ेंगे, तब याजूज और माजूज का खात्मा होगा, और फिर इमाम आ जाएंगे। बल्कि बाद रिवायतों में कि वो होंगे और उनके होते हुए इमाम आ जाएंगे, लेकिन इमाम से उनकी जंग नहीं हो पाएगी, क्योंकि अल्लाह एक छोटे से कीड़े की मदद से उनका खात्मा करेगा। क्योंकि असल मौजू याजूज माजूज नहीं है, तो मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं बता रहा हूं। ये सारी निशानी, वैसे तो काफी हद तक हमें आज के जमाने में ये निशानियां पूरी होती नजर आ रही है, लेकिन नहीं कहा जा सकता कि 100 साल के बाद फिर कैसी कोई कौम इतनी तरक्की कर जाए और ये सारी चीजें हो। मगर लोग कहते हैं मौलाना ऐसी निशानी बताइए ताकि हम बिल्कुल उसी वक्त अपने आप को तैयार करें, बहुत पहले से तैयार होके ना बैठ जाए। तो इसीलिए यहां पे एक और पैगाम मिला, बस मैं इख्तिताम पे जा रहा हूं, और वो पैगाम ये मिला कि ये बात याद रखो, ये सारी निशानियां हैं मगर इमाम बगैर किसी निशानी के भी आ सकते हैं, हो सकता है एक निशानी पूरी ना हो। हम तो इमाम को देख के घबरा जाए, मौला मौला ये देखिए लिस्ट में तो अभी 5 बातें बाकी हैं, अभी से आप कैसे आ गए। मेरे साथ तो कई दफा ही तमाशा हो चुका है कि जरा समय टाइम में पंक्चुअल हूं, कोई मजबूरी आ जाए, कभी ट्रैफिक जैम हो गया, कभी गाड़ी खराब हो गई, पंक्चुअल। शादी ब्याह में कराची का तरीका, वो 7 बजे उन्होंने टाइम दिया, हम पहुंच गए 7:30 बजे। अरे दूर दूर तक ना दूल्हा वाले ना दुल्हन वाले कोई वजूद ही नहीं है। हमने फोन करवाया कि भाई हम आ गए, कहा मौलाना अभी से आप आ गए, हम तो 11 बजे घर से निकलेंगे। टाइम पे जाने वाला, खासतौर पर पाकिस्तान की शादी है तो कोरोना की वजह से कुछ टाइमिंग वाइमिंग चेंज हुए, तो हम कहेंगे मौला आप अभी से आ गए, अभी तो हमारी लिस्ट बताती है कि सुफियानी भी नहीं आया और वो सूरज ग्रहण भी नहीं लगा और अभी तो नस्ल जकिया भी नहीं शहीद हुए और आप आ गए। ऐसे ही होगा, निशानियां अपनी जगह है ताकि हर वक्त तैयार होते रहो, लेकिन फिर कहा बगैर निशाने के भी आ सकते हैं ताकि हर वक्त तैयार होके बैठो। तैयार होके बैठो इसका क्या मतलब है? क्या इमाम के लिए कोई तैयारी करना पड़ेगी? जब यही तो गलत फहमी है जो मोमिनीन को इमाम के अगेंस्ट कर देगी। जहूर इमाम के बाद इमाम की जो पहली फौज है उसमें 2 बड़े फितने पैदा होंगे, एक गालियों का फितना, एक मुकस्सिरों का फितना। ये जहूर इमाम के बाद है, कल सुनिएगा, आज वक्त नहीं, आज सिर्फ एक बात सुन ली, और वो ये कि अपने आप को तैयार करना इमाम के लिए। अलग समझे कुछ नहीं, बस घर में बैठे रहो, अपनी नॉर्मल जिंदगी गुजारो, वो जिब्राइल ऐलान करेंगे, हम अपने घर से निकल के मक्का पहुंच जाएंगे, होगा इमाम के साथी। इस तरह नहीं बनते इमाम के साथी, एक क्राइटेरिया होता। अब एक जुमला मैंने बड़ा दिल का दुखा देने वाला सुना, बजाहिर जुमले में कोई खराबी नहीं है लेकिन इसका इंप्रेशन, खुद का तस्करा करते हुए पाकिस्तान में बाज उलमा नहीं, आलिम कभी ऐसी बेतुकी बात कहेगा, बाज स्पीकर, देखिए हो एक लम्हे में जहन्नम से जन्नत गया बरहक, एक जंप लगाई उसने और जन्नत पहुंच गया, बिल्कुल 100% सही। और कहा आपको मालूम है हुर ने अपनी नमाजें नहीं बदली है, हुर ने अपना इमाम बदला। अब इंप्रेशन क्या दिया जा रहा है कि बस इमाम बदला, इसके बाद किसी चीज की जरूरत नहीं, चाहे कहने वाले की नीयत ना हो, मजमे को तासर मिलता है वाजिबात हराम, इसकी कोई अहमियत नहीं। हुर ने नमाज तो नहीं बदली थी, नमाज तो उसको निजात नहीं दिला रही, इमाम बदला। 2 चीजें, अगर इसका मतलब यही है कि बस इमाम बदल लो बाकी कुछ नहीं बदलना, तो यही तो गलती लोगों को इमाम जमाना के खिलाफ करेगी। वो समझ रहे बस इमाम आ जाए, हमें अपने आप को कुछ नहीं बदलना, होने के अपने आप को बदला। मैंने इस जुमले का मैं आपको रिजल्ट बता रहा, इमाम बदल। अरे इमाम बदलने का मकसद ही है कि पूरी जिंदगी बदलो अपनी। अब अगर हुर इमाम बदलने के बाद नमाज का वक्त आता तो नमाज का वक्त नहीं था ना, तो कैसी नमाज पढ़ता? बदली हुई नमाज पढ़ता कि वही पुरानी वाली? नमाज का वक्त आता तो आप उसकी नमाज भी बदली हुई देखते, रोजा भी बदला हुआ देखते। इमाम बदलना मतलब यह है कि सारी जिंदगी बदलना, खाली यह नहीं है कि आपने यहां से उठा के नाम वो रख दिया। ये जो यजीद को मान रहे थे अब हुसैन को इमाम मान रहे हैं। हुसैन के मानने का मतलब है सर से पैर तक अपने आप को बदलना, और यही इमाम जमाना हमसे तवक्को कर रहे हैं, लेकिन वो चीज अपने मौके पर आई। हुर करबला का अजीम तरीन मुजाहिद, गदीरी इस्लाम का एक बहुत अहम पैगाम है, लेकिन अब वो कल मिलेगा हुर की वजह से, हुर की मदद से, जबकि आज मसाइब हुर के आज पढ़ना, मसाइब आज सुन लीजिएगा, बयान कल सुनिएगा। क्या करूं, मेरे साथ कुछ ऐसा ही वक्त का मसला। हुर करबला के जितने मुजाहिद हैं उनके मुकाबले में हुर के जिहाद की खुसूसियत है, इतनी बड़ी कुर्बानी उसने दी। एक आदमी दीनदार घराने में पैदा हुआ, मोमिन घराने में पैदा हुआ, वालिदैन भी उसके ऐसे, घर माहौल भी ऐसा, और वो फिर मरते दम तक नमाजी रहा, रोजेदार रहा, बड़ी बात है। लेकिन एक पैदा हुआ शराबी घराने में, गुनाहगार घराने में, मुखालिफ दीन घराने में, और फिर वो नमाजी बने, और फिर वो मुत्तकी बने, और फिर उसके घर में हिजाब आए, ये बहुत बड़ा इम्तिहान, ये बहुत बड़ी कामयाबी, ये बहुत बड़ी कुर्बानी। और यजीद की फौज का एक ऐसा सिपाही कि बज़ाहिर तो यही लगता कि करबला के वाकये की बहुत बड़ी जिम्मेदारी इस पर आती, भाई एक पुरअमन काफिला अपनी मंजिल की जानिब जा रहा, किसने रास्ता रोका और किसने हुसैन के घोड़े की बाग पे हाथ रख के कहा फर्जंद रसूल अब आपको आगे न जाने दूंगा। मारिफत हुसैन तो उस वक्त भी थी, पूरी नहीं लेकिन थी, कि जब हुसैन ने कहा सकलत का उम्मीद तेरी मां तेरा मातम करे, और उसने पलट के कहा कि अरब में अगर कोई और मेरी माँ का ताना देता तो मैं भी पलट के यही ताना देता, लेकिन आपकी माँ तो सैयदा निसाए आलमीन खुद जानता है। और आज पाकिस्तान में कितने लोग कह रहे हैं कि नऊज़ुबिल्लाह खताकार थी, कितने लोग तो नहीं कह रहे, लेकिन जो भी कह रहा है उसके चाहने वाले हाली मवाली मौला, लेकिन आपकी माँ तो सैयदा निसाए आलमीन है, उनके बारे में मैं क्या कह सकता हूं। मारिफत रखता है इतना हुसैन की और हुसैन की मां की, लेकिन यह काम नहीं आती। अगर इसी हालत में ही लश्कर यजीद के साथ रहता, कामयाबी कहां आई जब उसने अपने आप को बदला पूरा। ज़ैनब कुबरा को उसका बाबा बचपने से करबला के लिए तैयार करा रहा था, तो ज़ैनब को भी पता था कि जब कोई हमारे काफिले को रोकेगा करबला शुरू हो जाएगी। जैसे ही हुर ने हुसैन की सवारी को रोका, महमिलों से बीबियों के रोने की आवाज आने लगी। फिर कौन था जो हुसैन को करबला लेके आए? अभी ना उमर साद है, ना शिमर है, ना खुली, ये हुर है। जिस वक्त हुसैनी खेमे दरिया के करीब लगाए गए और कहा कि नहीं खेमे उखाड़े जाएं, हुर भी उस वक्त फौजे यजीद का हिस्सा। 7 मुहर्रम को उमर साद के यहाँ एक मीटिंग हुई खेमे में, हुसैन के बच्चों का पानी बंद किया जाएगा। हुर ने कोई इख्तिलाफ किया? हुर ने कोई इजहार नागवारी किया? हुर मुकम्मल तरीके से उस मीटिंग में शरीक। कौन था जिसने इब्ने ज़ियाद को खत पे खत लिख के हुसैन यहां आ गए हैं, हमारे कब्जे में हैं, फौजें भेजो? उमर साद आया, शिमर आया, खुली आया, हरमुल आया, हुर के खत। आपको मालूम है ना कि करबला का जिहाद हुसैन ने आशूरे को किया, यजीदियों ने तो तासुआ को कर दिया। अरबी में आशूरा कहते हैं 10th of Muharram, तासुआ कहते हैं 9th of Muharram। 9 मुहर्रम को हमारे साथ ने जंग शुरू कर दी थी। आका हुसैन ने अब्बास को भेजकर एक रात की मोहलत ली या एक रात की मोहलत दी, लेकिन जब यह जंग शुरू हुई 9 मुहर्रम को, उस वक्त हुर क्या किस हालत में था और कहां था? हुसैनी लश्कर में नहीं था, यजीदी लश्कर में था, जंग शुरू हो रही पूरी तरह से उनके साथ। लेकिन आशूर की सुबह आई, रातों रात क्या माजरा हुआ, क्या सोचा इसे एक रात में हुसैन को एक ऐसा मुजाहिद दिलवा गया कि आज भी हुर के रोजे पे हम जाएंगे, बे अभी व उम्मी, मेरे मां बाप तुम पे कुर्बान। आपने सुना होगा शाह इस्माइल सफवी वो बादशाह जब करबला की जियारत को आया तो देखा कुछ शिया हुर को अच्छा नहीं समझ रहे हैं, यही बातें जो मैंने बताई। वो कंफ्यूज हो गया कि मुझे हुर की जियारत करना है कि नहीं करना। आखिर ये तय पाया कि शहीदान राह खुदा के लाशे कब्र में सलामत रहते हैं, खुल की कब्र को खोल के देखा जाए, अगर ये राह खुदा का शहीद है तो लाशा सलामत होगा, और जब हुर की कब्र को खोला गया तो हुर इतना तरोताजा बदन था जैसे कोई इस वक्त अपने बिस्तर पे सो रहा है। खाली यही नहीं, हुर को एक ऐसा एजाज भी मिला जो करबला के किसी और शहीद को नहीं मिला। कि जब हुर जमीन है करबला पे गिरा था और आका हुसैन उसके सराहने आए थे, खून जारी था, आका ने अपनी जेब से वो रूमाल निकाला जो फातिमा जहरा ने अपने हुसैन के लिए सिया था, और वो रूमाल जहरा आका ने अपने हाथ से हुर के जख्म पे बांधा। अल्लाह, करबला का कोई और शहीद ऐसा है? फातिमा जहरा के हाथ का सिला हुआ रूमाल हुर के जख्म की पट्टी बना। शाह इस्माइल ने देखा कि वो रूमाल अभी तक बंधा, उसने सोचा कि अब हुर को तो जरूरत नहीं, मैं बरकत के लिए इसको ले जाऊं। लेकिन जैसे ही वो रूमाल सहारा खोला, हुर के सर से इस तरह ताजा खून निकलने लगा जैसे अभी अभी कोई आदमी जख्मी होके गिरा है। घबरा के जल्दी से वो रूमाल बांध दिए। एक रात पहले तक हुसैन को करबला में लेके आने वाला, इब्ने जियाद को खत लिखने वाला, पानी बंद करने की मीटिंग में बराबर से शरीक होने वाला, 9 मुहर्रम को जंग शुरू हो गई, यजीदी फौज का सिपाही बनने वाला, 10 मुहर्रम को इस तरह से बदला कि रूमाल सहरा जो किसी हाशमी शहजादे को भी नहीं मिला, वो हुर के सर पे हुसैन ने अपने हाथ से बांधा। 10 मुहर्रम की सुबह आई, हुसैन की फौज एक तरफ तैयार हो रही, यजीद की फौज सामने तैयार हो रही। हुर के चेहरे का रंग बदला हुआ, उसके करीबी दोस्त ने देखा, पहचान लिया, कहा, हुर तू बहुत परेशान नजर आ रहा। कहा कि हाँ, मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया, दिल चाहता है अपने गुनाह को माफ कराऊं। दोस्त ने पूछा कैसे? कहा कि हुसैन का साथी बनना चाहता हूं। हुर का दोस्त कहता है, हुर ये क्या गलती कर रहा, तूने इतनी बड़ी गलती और गुनाह किया है, तुझे कोई माफ नहीं कर सकता। यजीद का साथ छोड़ के जाएगा, यहां से भी महरूम रहेगा, वहां भी तुझे कबूल ना किया जाएगा। हुर ने कहा, लेकिन मैं जिसके पास जा रहा हूं, मुझे उस पर यकीन है कि इससे भी बड़ा गुनाह करके जाऊं तब भी वो मुझे माफ कर देगा। ये कह के घोड़े पे सवार हुआ, बेटे को और गुलाम को साथ में लिया, और एक मर्तबा ये लोग चले आका हुसैन के लश्कर की तरफ। सामने के लश्कर में हुर को हर एक पहचानता, रास्ते में इसी ने तो काफिला रोका था। जैसे ही हबीब इब्ने मुजाहिर ने देखा कि हुर आ रहा, असहाबे इमाम को आवाज दिया, या असहाबे इमाम जल्दी से शहजादों को अपने घेरे में ले लो, दुश्मन आ रहा है, ऐसा ना हो कि वो अचानक आ जाए और हम जिंदा हो और शहजादों को नुकसान पहुंच जाए। और अब्बास अलमदार ने आवाज दी, अरे जवानाने बनी हाशिम, आका हुसैन को घेरे में ले लो, ऐसा ना हो कि ये आके आका हुसैन को नुकसान पहुंचा दे। अरे हबीब, इस वक्त तो तुम्हारी ये हालत है कि शहजादों को नुकसान ना पहुंचे, लेकिन उस वक्त क्या गुजरेगी जब यही कासिम का बदन टुकड़े होगा, अकबर के कलेजे में बर्ची उतरेगी, असगर के नन्हे से गले को 3 भाल का तीर लगेगा, अब्बास के बाजू कलम होंगे। आए मेरे मौला अबिल फजल अब्बास, आए मुहाफिज हुसैन, आए अलमदारे करबला, कितनी तेजी से आपने हुसैन को घेरे में लिया, लेकिन उस वक्त की हालत होगी जब सर से पैर तक मेरा आका तीरों से छलनी, दाएं देखेगा बाएं देखेगा, कहेगा हल मिन नासिरिन यंसुरुना, मगर हुर करीब नहीं आया। एक फासले पे रुक गया, जेब से रूमाल निकाला, अपने दोनों हाथ बांधे और एक मर्तबा आवाज देता है, अरे रहमतुल्लिल आलमीन के बेटे, क्या दुनिया का सबसे बड़ा गुनाहगार आपकी बारगाह में आ सकता है? हुसैन ने कहा, अब्बास अपने सिपाहियों को रोको, हबीब अपनी फौज को रोको, मेरा मेहमान आ रहा है, इस्तकबाल को मैं खुद जाऊंगा। घोड़े को दौड़ाते हुए हुर के करीब आए, और इससे पहले कि हुसैन कुछ कहे, हुर ने हुसैन के पांव पे सर रख दिया। हुसैन घोड़े पे बैठे, रिकाब में पांव है, हुर ने सर रख दिया और एक ही जुमला कहा, अख्ता तो यबना रसूल अल्लाह, अख्ता तो यबना रसूल अल्लाह, फर्जंदे रसूल मैंने बड़ी खता की, तुझे तेरी माँ फातिमा ज़हरा का वास्ता, मेरी इस खता को माफ कर दे। हुसैन घोड़े से उतरे, हुर को गले से लगाया, जुमला कहा, आए हुर अंता अखी फी दुनिया वल आखिरा, अरे तू तो मेरा भाई दुनिया में भी है, तू तो मेरा भाई आखिरत में भी है। हुसैन की सारी फौज घोड़ों से उतर आई, हुसैन का भाई जमीन पे खड़ा है, हम घोड़ों पे बैठे रहे। और हुसैन ने कहा तेरी माँ ने तेरा नाम हुर बिल्कुल सही रखा था, हुर माने आजाद। लेकिन ऐ हुर इस वक्त मैं बहुत खुश हूं और बहुत गमगीन भी हूं। खुशी इस बात की है कि बातिल को छोड़ के हक पर आ गए, अंधेरे को छोड़ के नूर में आ गया, जहन्नम को छोड़ के जन्नत में आ गया, हलाकत को छोड़ के नजात में आ गया। गमगीन क्यों? गमगीन इसलिए हूं कि कल जब मेरा दुश्मन बन के आया था रास्ते में, तो तुझे मैंने इतना पानी पिलाया कि तेरे घोड़े तक तीन मर्तबा मुंह हटा रहे थे, और आज मेरा भाई और मेहमान बन के आ रहा हुसैन, एक कूजाए आप तेरे लिए पेश नहीं कर सकता। ये जुमला था गैरतमंद हो रहा है ना, ऐसा लगा रूह पे किसी ने कोड़ा मारा। कहा मौला वाकई मैंने बड़ी खता की थी, मैं अपनी खताएं माफ कराने आया हूं, और मौला इसके लिए मैं ये चाहता हूं कि सबसे पहले मेरे बेटे को मरने की इजाजत दी जाए। हुसैन ने कहा तू मेरा मेहमान बन के आया, आम हालात होते तो मैं तुझे मख्तल में ना जाने देता, तेरे बेटे को भी इजाजत ना देता, लेकिन आज हर एक को मरना है, कोई पहले मरेगा कोई बाद में मरेगा, जा मैंने तेरी ख्वाहिश पूरी की। हुर का बेटा चला, हुर ने आवाज दी बेटा इस तरह का जिहाद करना कि तेरे बाप का गुनाह माफ हो जाए। जिहाद किया, आखिर बेटा घोड़े से जमीन करबला में गिरा, जवान बेटा जख्मी बेटा बाप को आवाज देता है या अबता अदरिकनी, बाबा जरा मेरी मदद को आइए। और बहरहाल बाप है, बेचैन होके अपनी जगह से खड़ा हुआ, बेटा बुला रहा है जाना चाहता है, हुसैन ने रोक दिया। और क्या कर रहा, कहां जा रहा? तो मौला बस इतनी इजाजत दे दीजिए, बेटा बुला रहा है, बेटे के सराहाने पहुंच जाऊं। हुसैन ने कहा नहीं और तुम यहीं बैठो, दो बातें याद रखो, तुम मेरे मेहमान हो, तुम्हें जहमत नहीं करना, हुसैन जाएगा तेरे बेटे को उठा के लाएगा, मगर दूसरी बात कलेजा टुकड़े टुकड़े होता है। हुसैन ने कहा हुर सुनो, कभी बूढ़े बाप जवान के लाशे पे नहीं जाते हैं, बूढ़े बाप जवान का लाशा नहीं उठाते हैं, तुम यहीं बैठो, तुम्हारे बेटे का लाशा मैं लेके आऊंगा। बस आखिरी जुमला, हाथ जोड़कर कहता हूं मौला बिल्कुल आपने सही कहा, जवान का लाशा बूढ़े बाप नहीं उठाते, मगर हुर का बेटा अगर मरे तो बाप को रोक दिया गया, और जब 18 साल का शबी है रसूल खुदा लैला का चांद घोड़े से जमीन है करबला पे गिरा, तो ये बूढ़ा बाप किस तरह से जवान बेटे के लाशे पे पहुंचा हो। अजरुकुम अल्लाह परवरदिगारा, हुर की इस माफी का वास्ता और अली अकबर की शहादत के इस मुख्तसर बयान का वास्ता, हुसैन के इस इम्तिहान का वास्ता, हुसैन के चाहने वालों और मानने वालों को दुनिया और आखिरत की हर परेशानी से महफूज फरमा। आजादारान इमाम मजलूम को, इनके घरों को, इनके घर वालों को, इनकी औलादों को, उनके रिस्क के जराए को हर आफत और परेशानी से महफूज फरमा। परवरदिगार आज कोरोना डिजीज का तस्किरा मजलिस में हुआ, इस बीमारी में दुनिया भर के तमाम मोमिनीन बल्कि तमाम मुसलमानों बल्कि तमाम इंसानों को इससे महफूज फरमा। खुदावंदा हुर की इस माफी का वास्ता, हम भी अगर गुनाहगार और खताकार हैं, आका हुसैन की रहमत का वास्ता हमारे हर गुनाह को माफ कर दे। ज़हूर इमाम ज़माना में ताजील फरमा और हमें इस काबिल बना कि हम लश्कर इमाम ज़माना में शामिल हो सकें। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। मातम